गिनती बाब 15। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जो मैं तुम्हें दूंगा, तो जलने वाली कुर्बानियां यूं पेश करना। अगर तुम अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों में से ऐसी कुर्बानी पेश करना चाहो जिसकी खुशबू रब को पसंद हो, तो साथ साथ 1.5 किलोग्राम बेहतरीन मैदा भी पेश करो जो 1 लीटर जैतून के तेल के साथ मिलाया गया हो। इसमें कोई फर्क नहीं कि ये भस्म होने वाली कुर्बानी मन्नत की कुर्बानी, दिली खुशी की कुर्बानी या किसी ईद की कुर्बानी हो। हर भेड़ को पेश करते वक्त 1 लीटर मैं भी मैं की नजर के तौर पर पेश करना। जब मेढा कुर्बान गाह की तरफ कुर्बान किया जाए तो 3 किलोग्राम बेहतरीन मैदा भी साथ पेश करना जो 1.25 लीटर तेल के साथ मिलाया गया हो। 1.25 लीटर मैं भी मैं की नजर के तौर पर पेश की जाए, ऐसी कुर्बानी की खुशबू रब को पसंद आएगी। अगर तू रब को भस्म होने वाली कुर्बानी मन्नत की कुर्बानी या सलामती की कुर्बानी के तौर पर जवान बैल पेश करना चाहे, तो उसके साथ 4.5 किलोग्राम बेहतरीन मैदा भी पेश करना जो 2 लीटर तेल के साथ मिलाया गया हो। 2 लीटर मैं भी मैं की नजर के तौर पर पेश की जाए, ऐसी कुर्बानी की खुशबू रब को पसंद है। लाजिम है कि जब भी किसी गाय बैल भेड़ मेढे बकरी या बकरे को चढ़ाया जाए तो ऐसा ही किया जाए। अगर एक से ज्यादा जानवरों को कुर्बान करना है तो हर एक के लिए मुकर्रा गल्ला और मैं की नजरें भी साथ ही पेश की जाए। लाजिम है कि हर देसी इसराइली जलने वाली कुर्बानियां पेश करते वक्त ऐसा ही करे, फिर उनकी खुशबू रब को पसंद आएगी। ये भी लाजिम है कि इसराइल में आरजी या मुस्तकिल तौर पर रहने वाले परदेसी इन उसूलों के मुताबिक अपनी कुर्बानियां चढ़ाएं, फिर उनकी खुशबू रब को पसंद आएगी। मुल्क कनान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए पाबंदियां एक जैसी हैं, खाह वो देसी हो या परदेसी, क्योंकि रब की नजर में परदेसी तुम्हारे बराबर है। ये तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए दायमी उसूल है। तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहने वाले परदेसी के लिए एक ही शरीयत है। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जिसमें मैं तुम्हें ले जा रहा हूं और वहां की पैदावार खाओ, तो पहले उसका 1 हिस्सा उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर रब को पेश करना। फसल के पहले खालिस आटे में से मेरे लिए 1 रोटी बनाकर उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश करो। 2 गाहने की जगह की तरफ से रब के लिए उठाने वाली कुर्बानी होगी। अपनी फसल के पहले खालिस आटे में ये कुर्बानी पेश किया करो। ये वसूल हमेशा तक लागू है। हो सकता है कि गैर इरादी तौर पर तुमसे गलती हुई है और तुमने उन अहकाम पर पूरे तौर पर अमल नहीं किया जो रब मूसा को दे चुका है या जो वो आने वाली नस्लों को देगा। अगर जमात इस बात से नावाकिफ थी और गैर इरादी तौर पर उससे गलती हुई, तो फिर पूरी जमात एक जवान बैल भस्म होने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश करे, साथ ही वो मुकर्रा गल्ला और मैं की नजरें भी पेश करे। इसकी खुशबू रब को पसंद होगी। इसके अलावा जमात गुनाह की कुर्बानी के लिए एक बकरा पेश करे। इमाम इसराइल की पूरी जमात का कफारा दे तो उन्हें माफी मिलेगी, क्योंकि उनका गुनाह गैर इरादी था और उन्होंने रब को भस्म होने वाली कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानी पेश की है। इसराइलियों की पूरी जमात को परदेसियों समेत माफी मिलेगी, क्योंकि गुनाह गैर इरादी था। अगर सिर्फ एक शख्स से गैर इरादी तौर पर गुनाह हुआ हो तो गुनाह की कुर्बानी के लिए वो एक साला बकरी पेश करे। इमाम रब के सामने उस शख्स का कफारा दे। जब कफारा दे दिया गया तो उसे माफी हासिल होगी। यही उसूल परदेसी पर भी लागू है। अगर उससे गैर इरादी तौर पर गुनाह हुआ हो तो वो माफी हासिल करने के लिए वही कुछ करे जो इसराइली को करना होता है। लेकिन अगर कोई देसी या परदेसी जानबूझकर गुनाह करता है तो ऐसा शख्स رب کی احانت کرتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ اسے اس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ اس نے رب کا کلام حقیر جان کر اس کے احکام توڑ ڈالے ہیں، اس لیے اسے ضرور قوم میں سے مٹایا جائے۔ وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ جب اسرائیلی ریگستان میں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو پکڑا گیا جو ہفتے کے دن لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ جنہوں نے اسے پکڑوایا تھا وہ اسے موسیٰ، ہارون اور پوری جماعت کے پاس لے آئے۔ چونکہ صاف معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس لیے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ پھر رب نے موسیٰ سے کہا، اس آدمی کو ضرور سزائے موت دی جائے۔ پوری جماعت اسے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کرے۔ چنانچہ جماعت نے اسے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا، جس طرح رب نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ رب نے موسیٰ سے کہا، اسرائیلیوں کو بتانا کہ تم اور تمہارے بعد کی نسلیں اپنے لباس کے کناروں پر ہندنے لگائیں، اور ہندنا ایک قرمزی ڈوری سے لباس کے ساتھ لگا ہو۔ اس پھندنوں کو دیکھ کر تمہیں رب کے تمام احکام یاد رہیں گے اور تم ان پر عمل کرو گے۔ پھر تم اپنے دلوں اور آنکھوں کی غلط خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑو گے، بلکہ زناکاری سے دور رہو گے۔ پھر تم میرے احکام کو یاد کر کے ان پر عمل کرو گے اور اپنے خدا کے سامنے مخصوص و مقدس رہو گے۔ میں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔